आवाज। रेडियो तेहरान के सभी श्रोता मित्रों की सेवा में जहरा जैदी और साथियों का सलाम पहुंचे। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ हम कुरान मजीद के सूरह जुहा की तिलावत और अनुवाद से करेंगे। कारी हैं हाशिम रोगनी।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل و دیوان ہے۔ سوگند ہے دن کی جب وہ چھا جائے اور رات کی جب اس کا سناٹا چھا جائے، اور ہے پیغمبر آپ کے پالنہار نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے اپرسن ہوا ہے، اور نشچے ہی پرلے آپ کے لیے سنسار سے اتم ہے، اور شیگر ہی آپ کا پالنہار آپ کو اتنا پردان کرے گا کہ آپ پرسن ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو اناتھ پایا اور شرن نہیں دی، اور آپ کو مارگ سے دور پایا تو گنتویہ تک نہیں پہنچایا، اور آپ کو نردھن پایا تو سمردھ نہیں کر دیا؟ اتا अनाथ पर क्रोध न कीजिए और मांगने वाले को न झिड़किए तथा अपने पालनहार की अनुकंपा का वर्णन करते रहिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9800 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir और हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। दोस्तों, आज मंगलवार है, इस माह की 8, शाबान की 17 और फरवरी की 27 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप सुनेंगे कार्यक्रम कुरानी किस्से और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा ज़ायोनी आतंकवाद। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा और अभी आप कुछ क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान ने परमाणु हथियारों को नष्ट करने की पुरजोर मांग रखी है। हमास और इसराइल के बीच कैदियों के आदान प्रदान का समझौता लगभग तय हो गया। यमन पर अमरीका और ब्रिटेन के हमले, यमन की जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन बिछाने को मंजूरी दे दी। और अब आप मरियम मेहरदादी और अख्तर रिजवी से विस्तार से समाचार सुनिए।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि ईरान पुरजोर तरीके से यह मांग करता है कि परमाणु हथियारों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, जो मानवता और पूरी धरती के लिए गंभीर खतरा है। जिनेवा में परमाणु निरस्त्रीकरण की बैठक के अवसर पर विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का कहना था कि एनपीटी की साख और उसका महत्व तभी है जब उसे पूरी तरह से लागू किया जाए और उसके हर अनुच्छेद पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि ईरान ने साबित किया कि वो हमेशा इस कोशिश में रहा है कि दुनिया परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए सहमत हो। विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान ने पहली बार 1974 में यह मांग उठाई कि पश्चिमी एशिया के इलाके को परमाणु हथियारों से सुरक्षित रखा जाए, मगर अमरीका और उसके घटक आज भी इस इलाके में परमाणु हथियारों के प्रसार की जड़ यानी इसराइल की सक्रिय रूप से मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़ायोनी शासन केवल फिलिस्तीनियों और इलाके के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि विश्व समुदाय को चाहिए कि इस खतरे को गंभीरता से ले और उसका मुकाबला करने के लिए ठोस निर्णय करे।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि गजा में ज़ायोनी शासन के नरसंहार के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की निष्क्रियता और चुप्पी सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने जिनेवा में बैठकों का सिलसिला जारी रखते हुए मंत्री स्तर पर एक बैठक में भाग लिया और फिलिस्तीन और गजा में इसराइल के अपराधों की निरंतरता और युद्ध क्षेत्र के विस्तार को निश्चित रूप से विश्व शांति के लिए खतरा करार दिया। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि ज़ायोनी शासन इस छोटे से क्षेत्र में 5 महीने से नरसंहार कर रहा है और इस दौरान गजा के 30,000 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 70% बच्चे और महिलाएं हैं। उनका कहना था कि ये आंकड़े मानव इतिहास में बच्चों की हत्या के सबसे भयानक आंकड़े हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अतिग्रहित क्षेत्रों के संकट को हल करने का तरीका ज़ायनी शासन द्वारा गजा और पश्चिमी जॉर्डन में चल रहे नरसंहार को तुरंत रोकना है। उन्होंने कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और आत्म निर्णय के अधिकार के आधार पर फिलिस्तीनी राष्ट्र को अवैध कब्जे से बचाने की कोशिश करता रहेगा।
लेबनान के हिजबुल्लाह आंदोलन ने कहा है कि ज़ायनी शासन के हमलों के जवाब में जो हथियार अब तक प्रयोग किए गए हैं वो हमारी रक्षा शक्ति का एक छोटा भाग है और हम ज़ायनी शासन के हमलों पर अंकुश लगाने के लिए अपने जवाबी हमलों का दायरा बढ़ाएंगे। हिजबुल्लाह ने कहा कि इसराइल का मुकाबला लेबनान और गजा दोनों के हितों को सामने रखते हुए किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने कहा कि इसराइली हमले का दायरा बढ़ेगा तो हमारे जवाबी हमलों का दायरा भी बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि दक्षिणी लेबनान में इसराइली हमलों में तबाही हो रही है लेकिन जवाबी हमलों में हम भी इसराइली प्रतिष्ठानों को ध्वस्त कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के अधिकारी ने चेतावनी दी कि अगर इसराइल ने आम नागरिकों को निशाना बनाया तो हम उन उसूलों को नज़रअंदाज कर देंगे जो हमने अपने लिए बना रखे हैं जिन पर हम अमल करते हैं। ज़ायनी सेना का कहना है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। इसराइली सेना के बयान में कहा गया है कि इसराइली युद्धक विमानों ने एतशाब इलाके में हिजबुल्लाह के सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना बनाया है।
अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा है कि यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन ने संभावित रूप से अमेरिकी झंडे के साथ सफर करने वाले टैंकर को मिसाइल का निशाना बनाया है। अंसारुल्लाह आंदोलन लाल सागर में उन इसराइली और इसराइल जाने वाले जहाजों को निशाना बना रहा है, जबकि इस बीच अमरीका और ब्रिटेन ने यमन पर हमले किए जिसके बाद यमनी फोर्सेज ने अमरीकी और ब्रितानी जहाजों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले सप्ताह अंसारुल्लाह ने औपचारिक चेतावनी जारी की और शिपिंग कंपनियों और बीमा कंपनियों से कहा कि इसराइल अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़ा कोई भी सफर पूरा करने के लिए लाल सागर का प्रयोग करने से बचें। अंसारुल्लाह ने गत 24 फरवरी को जिस अमरीकी टैंकर को निशाना बनाया वो संकट के हालात में अमरीकी सैनिकों के लिए तेल की सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस अमरीकी जहाज को अंसारुल्लाह ने निशाना बनाया उसके साथ अमरीकी नौसेना के युद्धपोत भी चल रहे थे। इस बीच गत 18 फरवरी को अंसारुल्लाह के हमले का निशाना बनने वाला जहाज रू बीमार उसी जगह पर खड़ा है जहां उसे निशाना बनाया गया।
अमरीकी और ब्रिटिश युद्ध विमानों ने एक बार फिर पश्चिमी यमन के हुदैदा प्रांत पर हमला किया है। अमरीका और ब्रिटेन के युद्ध विमानों ने पश्चिमी यमन के हुदैदा प्रांत के रास ईसा और अल सलीफ पर 3 बार बमबारी की जिसमें होने वाले संभावित नुकसान की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले 6 देशों के समर्थन से अमरीका और ब्रिटिश युद्ध विमानों ने यमन के 8 क्षेत्रों में 18 ठिकानों को निशाना बनाया था। अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन के ये हमले ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, हॉलैंड और न्यूजीलैंड के सहयोग से किए गए थे। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, हॉलैंड और न्यूजीलैंड ने भी एक संयुक्त बयान में घोषणा की है कि यमन के 8 क्षेत्रों पर हुए इस हमले में विभिन्न यमनी प्रतिष्ठानों, हथियारों के गोदामों, युद्ध हेलीकॉप्टर और मिसाइलों को नष्ट किया गया जबकि यमन के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और एक हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों का उद्देश्य यमन पर फिलिस्तीनियों के समर्थन में इसराइली जहाजों को निशाना न बनाने का दबाव बनाना है।
हमास और इसराइल के बीच संघर्ष विराम समझौता बहुत करीब होने की खबरें आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबरें हैं कि गजा पट्टी में संघर्ष विराम और कैदियों के तबादले से संबंधित समझौते पर सहमति लगभग बन चुकी है। इस समझौते के बारे में फ्रांस की राजधानी पेरिस में बातचीत हुई। ज़ायनी शासन को हमास की शर्त के आगे झुकना पड़ा है कि गजा पट्टी के उत्तरी इलाकों के फिलिस्तीनी जो इसराइली हमलों की वजह से वहां से हटने पर विवश हो गए थे उन्हें अपने घरों की ओर वापसी का मौका दिया जाएगा। इसराइल ने यह शर्त रखी है कि मिलिट्री सेवा की उम्र वाले युवा अभी उत्तरी गजा में अपने घरों की ओर नहीं लौटेंगे। इसराइल ने यह भी माना है कि गजा पट्टी में जा रही मानवीय सहायता की मात्रा बढ़ाई जाएगी और इसराइल इसमें रुकावट नहीं डालेगा। इसके साथ ही भारी मशीनें भी गजा के अलग अलग इलाकों में जा सकेंगी और इसराइली सेना घनी आबादी वाले इलाकों से बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा इसराइल इस पर भी तैयार हुआ है कि हर दिन 8 घंटे के लिए जासूसी उड़ानें बंद रहेंगी। سوتروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل اس بات پر تیار ہوا ہے کہ وہ حماس کے پاس موجود قیدیوں میں سے 40 مہیلاؤں اور بڑی عمر کے لوگوں کی رہائی کے بعد 400 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ اسرائیل نے یہ بھی مانا ہے کہ اس نے 2011 میں اپنے سینک گلعاد شالت کی رہائی کے سمجھوتے کے تحت آزاد ہونے والے جن فلسطینی قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا ہے انہیں بھی رہا کرے گا۔
یہ سماچار ریڈیو تہران سے پرسارت کیے جا رہے ہیں۔ ذہنی شاستن نے آج صبح غزہ پر اپنے حملے جاری رکھے اور رہائشی علاقوں پر بمباری کی۔ پراپت سماچاروں کے انوسار ذہنی حملہ وروں نے غزہ شہر کے باہری علاقے الدرز شیتر پر بمباری کی۔ اسی طرح ذہنی دشمن نے تل الحوا پر حملہ کیا۔ ذہنی شاستن کی یدھک نوکاؤں نے دکشنی غزہ میں شیخ الاجلین کے تٹ اور مدھ غزہ میں نصیرات تٹ پر گولہ باری کی۔ ایک انہیں حملے میں ذہنی گمانوں نے مدھ غزہ کے دیر البلا شیتر کو نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کے سواستھ منترالے نے بھی گھوشنا کی ہے کہ یدھ کی شروعات سے اب تک فلسطینی شہیدوں کی سنکھیا 30,000 تک پہنچ گئی ہے۔
فلسطین کی مظلوم جنتا کے سمرتن میں ایک بار پھر دنیا کے الگ الگ دیشوں میں پردرشن ہوئے ہیں۔ فلسطینی جنتا کے سمرتن میں پردرشن جاری رکھتے ہوئے اسپین، بریٹین، سویڈن، ہالینڈ اور امریکی شہروں سانٹا مونیکا اور ہنس ویلے میں بھی جنتا زینیوں کے نرسنگار اور کروزتا کا ویرودھ کرتے ہوئے سڑکوں پر اترے ہیں۔ فلسطین سمرتک پردرشنیوں نے زانی ویرودھی نعرے لگائے اور غزہ پر حملوں کو تتکال روکنے اور سائی یدھ ویرام کے ساتھ ساتھ زانی شاسن کو امریکی سہایتا کو بند کرنے کی بھی مانگ کی۔ ان اپرادھوں پر دنیا بھر میں کڑی پرتکریائیں ویکت کی جا رہی ہیں اور دنیا کے سبھی دیشوں کے لوگوں تتھا وبھن سرکاروں اور انتراشٹری سنگٹھنوں نے اتپیڈن فلسطینی لوگوں کا سمرتھن کرنے کی اپیل کی ہے۔
فلسطین کے اسلامی پرتیرودھ آندولن حماس نے امریکی وایو سینا کے ایک سینک کے آتمدہ اور موت کے لیے بائیڈن پرشاسن کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ فلسطین کے اسلامی پرتیرودھ آندولن حماس نے غزہ میں ذہنی اپرادھوں اور فلسطینیوں کے چل رہے نرسنہار کے ورودھ میں ایک امریکی سینا ادھیکاری دوارا آتمدہ کی گھٹنا پر پرتکریا ویکت کرتے ہوئے کہا کہ امریکی وایو سینا کے جوان کی آتمدہ اور موت کا ذمہ دار بائیڈن پرشاسن ہے۔ فلسطین کے سماچار ایجنسی سما کے انوسار فلسطین کے اسلامی پرتیرودھ آندولن حماس نے گھوشنا کی کہ آتمدہ کی یہ گھٹنا جو بشنل کی مرتیو میں سماپت ہوئی نرسنہار میں فلسطینی جنتا کی بھاگیداری پر امریکی جنتا کا رخ نہیں ہے اور یہ جنتا کی بڑھتی ناراضگی کا چن ہے۔
امریکہ کے راشٹرپتی جو بائیڈن اس کوشش میں ہے کہ آگامی سوموار سے غزہ پٹی میں سنگھرش ویرام ہو جائے اور قیدیوں کی رہائی میں سفلتا ملے۔ ایکسس ویب سائٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ جو بائیڈن چاہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے 6 ہفتوں کا سنگھرش ویرام ہو جائے۔ وہیں ویب سائٹ نے اسرائیلی ادھیکاریوں کے حوالے سے یہ سوچنا بھی دی ہے کہ حماس کے نیتاؤں کو اس سمجھوتے پر نراشا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ حماس کے سٹینڈ میں اور موجود سمجھوتے میں کافی گیپ ہے۔ اسرائیلی ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ اس گیپ کو دیکھتے ہوئے آشا نہیں کی جا سکتی ہے کہ یہ سمجھوتا سفل ہو جائے گا۔ ویب سائٹ کا ہنا ہے کہ شمع کیجیے گا ویب سائٹ ہنا نے کہا ہے کہ پیرس میں اس گیپ پر بڑی سگن بات چیت ہوئی ہے اس بیر اور آشا ہے کہ سوموار تک سمجھوتا ہو جائے گا۔
پاکستان سرکار نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ کو لے کر ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ 15 سال بعد پاکستان کی کارواہک کیبنٹ نے ایرانی سیما سے گوادر تک 81 کلومیٹر پائپ لائن بچھانے کے فیصلے کو منظوری دے دی۔ کیئر ٹیکر کیبنٹ نے وجھپتی جاری کر کے نرنے کو منظوری دے دی۔ پائپ لائن بچھانے سے پاکستان کو 18 بلین ڈالر کا جرمانہ بھرنے سے بچایا جا سکے گا۔ سوتروں کا کہنا ہے کہ ایرانی سیما سے گوادر تک پائپ لائن کے نرمان پر 45 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ ایران سے آنے والی 7 ملین کیوبک فٹ گیس LNG کی تلنا میں بہت سستی ہے۔ ایران سے گیس خریدنے کے پریڑام سوروپ پاکستان کو سالانہ 5 ارب ڈالر سے ادھک کی بچت ہوگی۔
پاکستان میں چناؤں کے بعد سرکار گٹھن کی پرکریا چل رہی ہے۔ پنجاب اور سندھ میں پرانتیہ سرکاریں بن چکی ہیں تو خیبر پختونخوا میں شکروار کو مکھیہ منتری شپتھ لیں گے، جبکہ کیندر سرکار گٹھن کے مدعے پر ابھی بھی کھینچا تان اور چیتاونیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ راشٹرپتی عارف علوی نے نیشنل اسمبلی کا ستر بلانے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر ابھی پورا نہیں ہے، جبکہ سبھاپتی راجہ پرویز اشرف نے نچلے صدن کا ستر 29 فروری کو بلا لیا ہے۔ سنسدیے افیئرز ڈویژن کی سمری کے جواب میں راشٹرپتی نے کہا کہ نچلا صدن ابھی پورا نہیں ہے، اس لیے وہ اسمبلی کا سیشن نہیں بلا سکتے۔ اس پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ने कहा है कि राष्ट्रपति के अधिकार का गलत इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकानी अब्बासी ने कहा है कि जनता चुनाव पर बहुत हताश है, सरकार चलाना बहुत कठिन होगा, इस समय जरूरत इस बात की है कि सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाएं। और इसी के साथ रेडियो तेनान से समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। यूक्रेन और गजा युद्ध के बाद पश्चिमी नेता अब यह स्वीकार करने लगे हैं कि दुनिया पर पश्चिम का वर्चस्व समाप्त हो रहा है। जायजा ले रहे हैं अहमद अब्बास।
यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रभारी जोसेप बोरेल ने स्वीकार किया है कि दुनिया पर पश्चिम के वर्चस्व का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि गजा और यूक्रेन के युद्ध से यह बात पूरी तरह साबित हो गई। बोरेल का यह कहना है कि अगर जियोपॉलिटिकल तनाव पश्चिम की ओर बढ़ता है तो भविष्य में यूरोप के लिए खतरे बहुत बढ़ जाएंगे। पश्चिम के वर्चस्व का दौर निश्चित रूप से खत्म हो चुका है, मगर हम इस चीज को महसूस करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और गजा के युद्धों ने पश्चिम और दक्षिण के बीच टकराव की आशंका को काफी बढ़ा दिया है। बोरेल का यह बयान कि यूरोप में यूक्रेन और पश्चिमी एशिया में गजा की जंग के बाद दुनिया के राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक परिवर्तनों में पश्चिम की भूमिका बल्कि वर्चस्व खत्म हो चुका है, साबित करता है कि खुद पश्चिमी दुनिया में भी आलोचकों की नज़र में ये बात साफ हो गई है कि हालात बुनियादी तौर पर बदल गए हैं। बोरेल ने अपने बयान में दुनिया को पश्चिम और पूर्व, इसी तरह पश्चिम और दक्षिण में बांटने की कोशिश की, जो अपनी जगह पर एक वर्चस्ववादी नज़रिए की निशानी है, लेकिन सच्चाई यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक मैदानों में जो बदलाव आ रहे हैं वो चीन, रूस, भारत, ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका जैसे देशों, इसी तरह ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उत्थान के साक्ष्य हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले तो यूक्रेन की जंग बहुत महत्वपूर्ण है, जो पश्चिम के आक्रामक रुख का परिणाम है। पश्चिम ने नेटो का दायरा बढ़ाने की रणनीति के तहत इस युद्ध की आग भड़का दी और मॉस्को की चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ गजा की जंग, जो 7 अक्टूबर 2023 को तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन के बाद शुरू हुई, उसने भी पश्चिमी वर्चस्व के पतन की रफ्तार बढ़ा दी है। इस जंग में साफ दिखाई दिया कि पश्चिम की ताकत कमजोर पड़ चुकी है। शुरू में जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे देशों ने अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन के सुर से सुर मिलाकर यही बयान दिए कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्सेस, विशेष रूप से हमास का अंत कर दिया जाना चाहिए, लेकिन जंग को 5 महीने बीत जाने के बाद और इसराइल को अपना लक्ष्य हासिल कर पाने में सफलता न मिल पाने के मद्देनजर अब पश्चिमी देश कह रहे हैं कि वे गजा पट्टी में संघर्ष विराम चाहते हैं, मगर इसके बावजूद ज़ायनी शासन उनकी बात स्वीकार करने पर तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अमरीका और पश्चिमी देशों ने इसराइल की भरपूर मदद की कि उसे हमास और रेजिस्टेंस फोर्सेस से मुकाबले में सफलता मिल जाए, मगर इसराइल सफल नहीं हो पाया। ये पश्चिमी एशिया के इलाके में पश्चिम की खुली हुई शिकस्त की तस्वीर है, जो अब पश्चिमी देशों के भीतर मौजूद आलोचकों और विचारकों को भी नजर आने लगी है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
गजा युद्ध में फिलिस्तीनियों के जनसंहार और ज़ायोनी सेना के युद्ध अपराधों पर विश्व समुदाय की चुप्पी की अंसारुल्ला के नेता ने कड़ी निंदा की है। अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा है कि ज़ायोनी सरकार के हमलों के कारण फिलिस्तीन के मजलूम लोगों को बदतरीन कठिनाइयों व समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जायजा ले रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
यमन के अंसारुल्लाह संगठन के नेता ने फिलिस्तीन की मजलूम जनता के समर्थन पर बल देते हुए कहा है कि अधिकांश देश और सरकारें मूक दर्शक बनी हुई हैं और उनमें से कुछ दुश्मनों के साथ मिल गई हैं और गुप्त रूप से ज़ायोनी दुश्मन का समर्थन कर रही हैं। अब्दुल मलिक बदरुद्दीन हौसी ने कहा कि ज़ायोनी सरकार के हमलों के कारण फिलिस्तीन के मजलूम लोगों को बदतरीन कठिनाइयों व समस्याओं का सामना है। उन्होंने कहा कि गजा पर इसराइल के पारिवारिक हमलों के पहले दिन ही अमेरिका, ब्रिटेन और अधिकांश बड़े यूरोपीय देशों ने ज़ायोनी दुश्मन का विभिन्न प्रकार से समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ज़ायोनी सरकार के पास बहुत अधिक सैनिक संसाधन व हथियार होने के बावजूद अमेरिका और पश्चिम ने विभिन्न प्रकार के हथियारों, पैसों और तकनीक से ज़ायोनी सरकार की मदद की। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में तीसरी बार प्रस्ताव को वीटो करके पारित होने से रोक दिया और ज़ायोनी दुश्मन की मदद की। उन्होंने कहा कि अमेरिका फिलिस्तीनी लोगों की हत्या व नरसंहार पर आग्रह कर रहा है और वो गजा में फिलिस्तीन के लोगों के भूखा रहने का समर्थन कर रहा है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि इसराइल के अपराधों में अमेरिका उसका असली भागीदार है और ज़ायोनी सरकार के अपराधों में उसका समर्थन ब्रिटेन से वाशिंगटन को विरासत में मिली है। वाशिंगटन कमजोरों के समर्थन में सुरक्षा परिषद और राष्ट्र संघ की भूमिका में रुकावट व बाधा बन रहा है। यमन के अंसारुल्लाह संगठन के नेता ने कहा कि फिलिस्तीन के मजलूम लोगों के प्रति मुसलमानों का समर्थन कहाँ है। फिलिस्तीनी लोग समर्थन व मदद के पात्र हैं और कुछ सरकारों की चुप्पी अपराधों को अंजाम देने में ज़ायोनी सरकार के दुस्साहस का कारण बनी है। उन्होंने कहा कि गजा पट्टी की स्थिति जितनी बदतर होती जा रही है, मुसलमानों की जिम्मेदारी भी उतनी अधिक होती जा रही है। क्या मुसलमान सहायता करने के लिए गजा वासियों के पूर्ण रूप से खत्म हो जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी प्रकार अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा कि गजा में भूख के कारण मरने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है और बहुत से मरने वाले बच्चे और बड़ी उम्र के लोग हैं। यहाँ तक कि जानवरों का चारा भी खत्म हो रहा है। गजा में लाखों फिलिस्तीनी भूखे हैं और इस्लामी देशों व राष्ट्रों से वे मदद चाह रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि ज़ायोनी सरकार ने कुछ फिलिस्तीनी बंदियों की हत्या कर दी, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि पश्चिम महिलाओं के अधिकारों के समर्थन का दम भरता है। जब इसराइल फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों की हत्या करता है तो महिलाओं के समर्थन का उनका नारा कहाँ चला जाता है। इस समय पश्चिम से महिलाओं के समर्थन में कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम गैर अखलाकी, अनैतिक और समाजों को तबाह करने वाली बातों में महिलाओं के समर्थन का नारा लगाता है। बहरहाल अमेरिका, पश्चिम और यूरोपीय देश मानवाधिकार, बालाधिकार और महिला अधिकार के दावे में कितने सच्चे हैं, ये सब फिलिस्तीन के मजलूम लोगों के संबंध में उनके क्रियाकलापों से पूरी तरह पूरी दुनिया के लिए स्पष्ट हो गया है और उनके चेहरों पर मानवता प्रेम नाम का जो मुखौटा था उसकी वास्तविकता भी पूरी तरह जग जाहिर हो गया है।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई।
قرآنی قصے.
دوستو سپتاہک کارکرم قرآنی قصے کی ایک کنکڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہر دادی اور اختر رضوی کا سلام سویکار کیجیے.
دوستوں آج کے کارکرم میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پوتر قرآن کے سورہ حشر کی 1 سے لے کر 5 تک کی آیتیں کب نازل ہوئیں. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوتر نگر مکے سے مدینہ پلائن کیا تو اس شیتر کے یہودیوں سے شانتی سمجھوتا کیا. اس سمجھوتے کے انوسار یہودی نہ تو پیغمبر اسلام سے جنگ کر سکتے تھے اور نہ ہی کافروں و انیکیشور وادیوں کی مدد کر سکتے تھے. بنی قریظہ، بنی نظیر اور بنی قینقاع نام کے یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے اور یہ تینوں قبیلے قبا نامک محلے کے پوروتر میں ایک تربھج کی طرح رہتے تھے. بنی نظیر قبیلہ قبا محلے کے سب سے نکٹ تھا اور وہ اسلامی سرکار کے بالکل کیندر میں رہتا تھا.
یہ چیز اس بات کا کارن بنی کہ اسے مسلمانوں کی گپت و نہت شمتاؤں، یوگتاؤں اور سمبھاونا کی جانکاری پراپت ہو جاتی تھی. اسی طرح بنی نظیر قبیلے کو اسلامی سماج میں ہونے والی گتیویدیوں کی بھی جانکاری ہو جاتی تھی. جب مسلمانوں اور کافروں کے بیچ پہلی جنگ جنگ بدر ہوئی اور اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوئی تو یہودی بھی اپنے گھٹک یعنی مسلمانوں کی جیت سے پرسن ہوئے. پرنتو جب جنگ احد میں مسلمان ہار گئے تو کافروں اور مشرکوں کے اکسانے سے بنی نظیر قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ شانتی سمجھوتے کو ایک طرفہ طور پر توڑ دیا اور وہ پوتر نگر مدینہ میں اشانتی کرانے کی چیشٹا میں تھے اور پوتر نگر مدینہ سے باہر رہنے والے قبیلوں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ مدینہ میں مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ چھوٹا سا بھی شانتی و ایکتا سمجھوتا نہیں ہے اور ودیشی دشمن اسلامی سرکار کو ختم کر سکتے ہیں.
جب جنگ احد میں مسلمان ہار گئے تو کافر بہت پرسن ہوئے اور انہوں نے یہودیوں کو پتر لکھا کہ تمہارے پاس بھی بہت سمبھاونائیں ہیں اور مضبوط درگ ہیں اور اگر محمد تم سے جنگ کریں تو تم پرتیروت کر سکتے ہو اور ہم بھی تمہاری سہایتا کریں گے اور ہم تمہیں وچن دیتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہمارے اور تمہارے بیچ جدائی و الگ ہونے کا کارن نہیں بن سکتی. کافروں کی بات سے یہودی بہت پرسن ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ پیغمبر اسلام سے جنگ ہونے کی استھتی میں وہ جنگ جیت جائیں گے. یہ سوچ کر انہوں نے چال چلی اور پیغمبر اسلام کو سندیش دیا کہ 30 مسلمان 30 یہودی ودوانوں سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں اور اگر 30 یہودی مناسب سمجھیں تو اسلام دھرم سویکار کر سکتے ہیں اور حضرت محمد کے پیغمبر ہونے کی پشٹی کر سکتے ہیں اور بنی نظیر قبیلے کے لوگ بھی کسی نہ نکور کے بنا اسلام سویکار کر لیں گے.
پیغمبر اسلام اپنے 30 انویوں کے ساتھ یہودیوں کے رہنے والے کھیتر کی اور روانہ ہو گئے. بنی نظیر قبیلے نے بھی اپنے 30 ودوانوں کو چنا اور انہیں پیغمبر اسلام سے مناظرہ کے لیے بھیج دیا. جب بنی نظیر قبیلے کے لوگوں نے پیغمبر اسلام اور ان کے انویوں کو دیکھا تو چپکے سے ایک دوسرے کی اور سنکیت کیا اور کہا کہ ہم کدھاپی محمد کی ہتیا نہیں کر سکتے کیونکہ پیغمبر اسلام کے ساتھ 30 وے یودھا ہیں جو ان پر اپنے پرانوں کو نیوچھاور کر دیں گے. اس کے بعد انہوں نے بہانہ کیا کہ 60 لوگ کیسے سمجھوتا کر سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ 3 لوگ اپنے میں سے چنو اور ہم یہودیوں میں سے 3 لوگوں کا چین کرتے ہیں اور وہ آپس میں بیٹھ کر وارتا کریں. اگر ان 3 یہودیوں نے اسلام سویکار کر لیا اور انہوں نے پیغمبر اسلام کی پشٹی کر دی تو شیش یہودی بھی اسلام سویکار کر لیں گے اور پیغمبر اسلام کی پشٹی کریں گے.
اس کے بعد پیغمبر اسلام نے اپنے انیائیوں میں سے 3 کو چنا اور یہودیوں نے بھی اپنے چنے ہوئے 3 ویکتیوں کا پریچے کیا، کنتو ایک یہودی نے اپنے کپڑے کے نیچے خنجر و چاقو چھپا لیا تاکہ اچت اوسر و موقع ملنے پر پیغمبر اسلام کی ہتیا کر دی۔ مہان و سرو سمرتھ ایشور نے پیغمبر اسلام کو یہودیوں کے شڈینتر سے اوگت کرا دیا اور پیغمبر اسلام اپنی جگہ سے اٹھے اور یہاں تک کہ اپنے انویائیوں سے بھی بات کیے بنا چل دیے اور خود کو مدینہ پہنچایا۔ سبھا میں سبھی اس بات کی پرتیکشا میں تھے اور سوچ رہے تھے کہ پیغمبر اسلام کچھ شڑوں کے بعد دوبارہ لوٹ آئیں گے، پرنتو کافی سمے بیت گیا اور پیغمبر اسلام دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے۔ تو یہودی چنتت ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ ہماری جو یوجنا تھی شاید پیغمبر اسلام اس سے اوگت ہو گئے ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو پیغمبر اسلام ہمیں کڑی سزا دیں گے۔
اسی پرکار یہودی اپنے آپ سے کہتے تھے کہ اب پیغمبر اسلام ہماری پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں اور ان کا بدلہ ہم ان کے انویائیوں سے لیتے ہیں، پرنتو شیگر ہی وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو مسلمان ہم سے کڑا بدلہ لیں گے۔ اس حالت میں پیغمبر اسلام کے انویائیوں نے پیغمبر اسلام کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ لوگ یہودیوں کے محلے سے ادھک دور نہیں گئے تھے کہ راستے میں انہیں ایک آدمی ملا جو پوتر نگر مدینے سے آ رہا تھا، اور اسے پتا تھا کہ پیغمبر اسلام مدینہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ خبر اس ویکتی نے پیغمبر اسلام کے انویائیوں کو دے دی۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام کے انویائی سمجھ گئے کہ حضرت جبریل نے پیغمبر اسلام کو یہودیوں کی سازش سے اوگت کر دیا ہے۔
جب پیغمبر اسلام پر یہ بات پوری طرح اسپشٹ ہو گئی کہ یہودیوں نے شانتی کا سمجھوتا توڑ دیا ہے، تو انہوں نے ایک سینہ تیار کی اور بنی نظیر قبیلے کو گھیر لیا، اور اس کے بعد محمد بن مسلمہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ وہ ان کی طرف سے جلد بنی نظیر قبیلے کے بزرگ لوگوں تک میرا سندیش پہنچا دیں۔ اس کے بعد انہوں نے بنی نظیر قبیلے کے بزرگوں سے سمپرک کیا اور کہا، پیغمبر اسلام نے مجھ سے تم تک سندیش پہنچانے کے لیے کہا ہے، اور کہا ہے کہ 10 دن کے بھیتر اس کھیتر سے چلے جاؤ، کیونکہ تم لوگوں نے وچن و سمجھوتا توڑا ہے اور سازش رچنے لگی ہو، اور اگر یہ کام نہیں کیا تو تمہارا خون بہایا جائے گا۔
کئی دن بیت گئے، یہاں تک کہ یہودیوں نے سویکار کر لیا اور کہا کہ ہم اس کھیتر سے جانے کے لیے تیار ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ چل سمپتی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ پیغمبر اسلام نے اس پر سہمتی جتائی اور کہا کہ ہتھیاروں کے علاوہ یہودی دوسری چل سمپتی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، اور ہتھیاروں کو انہیں مسلمانوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ یہودیوں نے اپنے مالوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے یتھا سمبھو کوشش کی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گھروں کے دروازوں کو بھی اکھاڑ لیا تاکہ اسے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، اور جن چیزوں کو وہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے اسے نشٹ کر دیا۔ کچھ یہودی خیبر نامک کھیتر کی اور روانہ ہو گئے، جبکہ کچھ دوسرے شام کی اور روانہ ہو گئے، اور ان میں سے 2 نے اسلام سویکار کر لیا۔
دوستوں، یہی وہ موقع تھا جب سورہ حشر کی آرمبک آیتیں نازل ہوئیں۔ ان آیتوں میں مہان ایشور کہتا ہے کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا گڑگان کر رہا ہے، اور وہ سرو شکتیمان اور تتودرشی ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے نکالا، اور تم مسلمان گمان بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے گھروں سے جائیں گے، اور ان لوگوں نے گمان بھی کیا کہ انہوں نے اللہ کے کرود و پرتشوش سے بچنے کے لیے مضبوط چیزیں بنا لی ہیں۔ تو پھر اللہ کا عذاب وہاں ان تک پہنچ گیا جہاں وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے کہ وہاں پہنچ جائے گا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اپنے گھروں سے وہ اپنے آپ اور مومنین کے ہاتھوں نکل گئے۔ تو ہے بدھیمان لوگوں، اس سے پاٹھ و سبق سیکھ لو، اور اگر اللہ نے ان کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے کو نہ لکھا ہوتا تو انہیں اسی دنیا میں دنڈت کرتا، اور پرلوک میں ان کے لیے نرک کی آگ ہے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول سے دشمنی کی ہے، اور جو بھی اللہ سے
دشمنی کرے گا تو جان لو کہ بے شک اللہ کڑا دنڈ دینے والا ہے۔ ہر کھجور کے پیڑ کو کاٹ دیا یا تم نے اسے اس کی حال پر چھوڑ دیا تو یہ سب اللہ کے آدیش سے تھا اور اسی لیے تھا تاکہ فاسقوں اور بھرشٹ لوگوں کو ذلیل و اپمانت کرے۔
یہودیوں نے اپنے آپ کو پیغمبر اسلام کے حوالے کرنے سے پہلے ان مضبوط درگوں میں شرن لی اور ان کے دروازوں کو بند کر لیا جن کا نرمان انہوں نے پہلے سے کر رکھا تھا۔ پیغمبر اسلام نے ان کھجور کے پیڑوں کو کاٹنے یا جلانے کا آدیش دیا جو یہودیوں کے درگوں تک پہنچنے کے مارگ میں بادھا بن رہے تھے اور ان کی وجہ سے اسلامی سینا تیزی سے وہاں نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ جب یہودیوں نے دیکھا تو چلا کر اور اونچی آواز میں کہا کہ ہے محمد، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم تو ہمیشہ اس پرکار کے کاریوں سے منع کرتے تھے، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ اس سوال کا جواب سورہ حشر کی پانچویں آیت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بھرشٹاچاریوں کے دمن کے لیے ایک وشیش ایشوریہ آدیش تھا۔
دوستو، یہاں پر بہت سنشیپ میں یہودی قوم کا پریچے کرانا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مہان ایشور کے بڑے پیغمبروں میں سے ایک ہیں اور ان کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے، حالانکہ صحیح ارتھوں میں وہ نہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور نہ ہی ان کی شکشاؤں پر عمل کرتے ہیں اور سوئم کو یہودی بھی کہتے ہیں۔ اس طرح یہودی سوئم کو ہر جاتی سے شریشٹھ سمجھتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ مہان ایشور نے ہمیں سب سے افضل بنایا ہے اور دوسروں کو ہماری سیوا کے لیے پیدا کیا ہے اور اپنے ہتوں کے لیے دوسری جاتی و قوم کے لوگوں کا خون بہانے میں کوئی پاپ ہی نہیں ہے۔
دوستو، اسی غلط آستھا کے آدھار پر زائنی غیر زائنیوں و یہودیوں کا خون بہانے میں سنکوچ سے کام نہیں لیتے ہیں، جبکہ پویتر قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک نردوش ویکتی کی ہتیا کی اس نے مانو پوری مانوتا کی ہتیا کی۔ پویتر قرآن سمست انسانوں کو انسان ہونے کی حیثیت سے سمان مانتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ انسان ایشور کے نکٹ ادھک پرتشٹھت ہے جس کا تقویٰ ادھک ہو۔
یعنی مہان ایشور کے نکٹ پرتشٹھا کا آدھار تقویٰ ہے، نہ کہ یہودی یا غیر یہودی ہونا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے پرتشٹھا کا آدھار پویتر قرآن میں کچھ اور ہو اور دوسری کتابوں میں کچھ اور ہو، کیونکہ سمست آسمانی کتابوں کو مہان ایشور نے نازل کیا ہے اور مہان ایشور کے آدیشوں میں ورودابھاس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی۔ روشک بات یہ ہے کہ پویتر قرآن اور پیغمبر اسلام کی حدیثوں میں یہودی قوم کی بڑی آلوچنا و نندہ کی گئی ہے۔
تو دوستو، آج کے کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔
زائونی آتنکواد۔
دوستو، کارکرم شرنکلا زائونی آتنکواد کی چھٹی کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں ایک بار پھر سے اپستھت ہیں سواتی اور رویش زیدی کا سلام، سویکار کیجیے۔
دوستو، یہ بات تو اب پورے وشو کے لیے بہت اسپشٹ ہو چکی ہے کہ دشکوں پورو فلسطینی شیتر میں ایک اویدھ شاسن کا زبردستی گٹھن کیا گیا تھا جس کو اویدھ زیونی شاسن کہا جاتا ہے۔ اسرائیل نامک یہ اویدھ زیونی شاسن اپنے ورودھیوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ہر پرکار کے آتنک کا سہارا لیتا ہے۔ वो ये काम क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर करता रहता है। ये अवैध ज़ायोनी शासन अपनी अमानवीय और आतंकी कार्रवाइयों को सही दर्शाने के लिए वो उस हथकंडे का प्रयोग करता है जिसे उसका विरोधी जिंदा बाकी न रह पाए।
यह बात अब जग जाहिर है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अवैध ज़ायोनी शासन ही दुनिया में सरकारी आतंकवाद का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। विडम्बना तो यह है कि यह अवैध शासन उन यहूदियों की भी हत्याएं करवाता है जो इस शासन की हिंसक नीतियों का समर्थन नहीं करते। यह अवैध शासन हत्याएं करवाकर अपने विरोधियों के भीतर इतना डर बिठाना चाहता है कि वे डर के मारे अपनी जबान खोलते हुए भी घबराएं।
ये ऐसा शासन है जो अपने विरोधियों का केवल शारीरिक टॉर्चर ही नहीं करता बल्कि उनको मानसिक रूप में भी प्रताड़ित करता रहता है। फिलिस्तीनियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए अवैध ज़ायोनी शासन ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों में अवैध ज़ायोनी कॉलोनियों के निर्माण का काम शुरू कर रखा है। ये एक ऐसा काम है कि जिसके माध्यम से ये शासन जहां एक ओर फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ाता है वहीं पर यही काम फिलिस्तीनियों की मानसिक प्रताड़ना का कारण बनता है।
ज़ायोनी शासन के सरकारी आतंकवाद का एक अन्य उदाहरण इस अवैध शासन द्वारा क्षेत्रीय देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करना रहा है। इस शासन के युद्धक विमानों के कई बार विभिन्न निराधार वाहनों से सीरिया, लेबनान, मिस्र, इराक और जॉर्डन जैसे क्षेत्रीय देशों की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। इन देशों में उसने हवाई हमले किए हैं। अवैध ज़ायोनी शासन की इस कार्यवाही की बहुत से लोगों ने निंदा भी की है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चुप्पी की आलोचनाएं की है।
दोस्तों, राजनीतिक टीकाकारों का मानना है कि ज़ायोनियों के अत्याचारों पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मौन ने ही इस अवैध शासन को अधिक दुस्साहसी बना दिया है। वैसे तो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ ने अवैध ज़ायोनी शासन की आतंकवादी कार्रवाइयों की निंदा में कई प्रस्ताव पारित किए हैं, लेकिन ये प्रस्ताव कभी भी इसराइल को उसकी हिंसक कार्रवाइयों को रुकवाने में प्रभावी सिद्ध नहीं हो सके हैं। कुछ अवसरों पर ज़ायोनी शासन के विरुद्ध बाध्यकारी प्रस्ताव भी पेश किए गए, किंतु अमेरिका के खुले समर्थन के कारण उनको लागू नहीं करवाया जा सका।
ये बात उल्लेखनीय है कि अवैध ज़ायोनी शासन के विरुद्ध जो प्रस्ताव लाए जाते हैं उनको अमेरिका वीटो कर देता है। इस हिसाब से अमेरिकी वीटो की आड़ में ज़ायोनी शासन मनमानी करता रहता है जिसका कोई रोकने वाला नहीं है। इस बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना जा चुका है कि दुनिया के सभी राष्ट्रों को अपने भविष्य के निर्धारण का पूरा अधिकार हासिल है। इस हिसाब से फिलिस्तीनियों के विरुद्ध अवैध ज़ायोनी शासन की हिंसक कार्रवाइयां मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है।
इस बारे में ये उदाहरण पेश किया जा सकता है, जब हमास ने फिलिस्तीन में आम चुनाव में विजय हासिल की थी तो उसके बाद ज़ायोनी शासन ने गजा का आर्थिक परिवेष्टन कर लिया था। हालांकि सन 1960 में पारित मानव अधिकारों को वैश्विक घोषणा पत्र के अनुच्छेद 21 में बहुत ही स्पष्ट ढंग से कहा गया है कि सारे राष्ट्रों को उनके अधिकारों के निर्धारण का अधिकार प्राप्त है। इसके आगे कहा गया है कि इसी के आधार पर वे राष्ट्र अपने राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार रखते हैं।
अमेरिका के एक राजनीतिक टीकाकार जेरेमी हैमोंड ने इसराइली जेलों में ज़ायोनी शासन की ओर से फिलिस्तीनी बंदियों पर किए जाने वाले अत्याचारों और उनके विरुद्ध किए जा रहे मानवाधिकारों के हनन की बात कही है। उनका कहना है कि जिन फिलिस्तीनियों को बंदी बनाकर इसराइल की जेलों में लाया जाता है उनके विरुद्ध ज़ायोनी सैनिक अमानवीय व्यवहार करते हैं। इस संबंध में वे मानवाधिकारों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते।
Thank you. दोस्तों, जब से अवैध ज़ायोनी शासन का गठन हुआ है उस समय से फिलिस्तीनियों के जीवन, अधिकार, सुरक्षा, रोजगार, यात्रा, स्वास्थ्य और कल्याण एवं निवास के अधिकारों का खुलकर हनन हो रहा है। पूरी दुनिया में पलायन का जीवन गुजार रहे फिलिस्तीनियों की अभिलाषा स्वदेश वापसी की है, जबकि अवैध ज़ायोनी शासन उनकी इस अभिलाषा के मार्ग में बाधाएं डालता रहता है, जिसके कारण वे अभी तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं। बहुत से फिलिस्तीनियों को तो अवैध ज़ायोनी शासन ने अपनी मातृभूमि से पलायन करने पर विवश किया है। वो उनको उनके ही घरों में बलपूर्वक निकाल कर बाहर कर देता है।
एक समय में परिवेशन का शिकार गजा से फिलिस्तीनी बीमारों को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इसी के साथ ही वहां पर दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की भी बहुत कमी थी। सन 2020 में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से पेश की गई वार्षिक रिपोर्ट में इस ओर संकेत किया गया है। गजा पट्टी और पश्चिमी तट पर हर दिन फिलिस्तीनियों की गरिमा का अनादर किया जाता है। वहां पर रहने वाले बहुत से फिलिस्तीनियों के पास उनके मूलभूत अधिकार भी नहीं है। जब से ज़ायोनियों ने गजा का परिवेशन कर रखा है, तब से यह क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से इतना अधिक वंचित हो चुका है, जिसके कारण उसको एक बहुत बड़ी जेल का नाम दिया गया है। वहां पर इस प्रकार से फिलिस्तीनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उसको एक सम्मानीय जीवन नहीं कहा जा सकता।
इसराइल द्वारा फिलिस्तीनियों पर किए जाने वाले अपराधों को छिपाने के लिए इस अवैध शासन ने उन लोगों को रास्ते से हटाने का काम शुरू कर दिया है कि जिनके माध्यम से समाचार दुनिया तक पहुंच सकते हैं, अर्थात पत्रकार। हालांकि पत्रकारों की हत्या करना इसराइल का कोई नया काम नहीं है। ज़ायोनियों ने मीडिया की आवाज को दबाने के उद्देश्य से 15 मई 2021 को गजा में बुर्ज अल जला नाम इमारत पर हमला किया था। गजा में मौजूद इस इमारत में अल जजीरा, एसोसिएटेड प्रेस, फ्रांस प्रेस और कई अन्य एजेंसियों एवं टीवी चैनलों के कार्यालय थे। इस इमारत पर ज़ायोनियों के हमले की व्यापक स्तर पर निंदा की गई थी।
इसराइल के हमले में इस इमारत को बहुत ही नुकसान पहुंचा था और तत्काल कुछ संचार माध्यमों ने वहां वे अपने कार्यालय हटाने का फैसला कर लिया था। इसी प्रकार से सन 2020 में अवैध ज़ायोनी शासन के सैनिकों ने अल जजीरा टीवी चैनल की फिलिस्तीनी मूल की महिला पत्रकार शीरीन अबू आकेला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ज़ायोनी सैनिक हमेशा ही उन पत्रकारों पर हमले करते रहते हैं जो वहां की स्थिति की रिपोर्टिंग करके उससे दुनिया को अवगत करवाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त इसराइल सैनिक उन पत्रकारों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं जो फिलिस्तीनियों का साथ देते हुए दिखाई देते हैं।
दोस्तों, इसराइल द्वारा फिलिस्तीनियों के अधिकारों का जो हनन किया जाता है, वो हनन कई स्वरूपों में दिखाई देता है। इनमें से कुछ के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर हम आपको एक अन्य विषय के बारे में बताना चाहते हैं। लंबे समय से ज़ायोनी शासन फिलिस्तीनियों के विरुद्ध प्रतिबंधित हथियारों का प्रयोग करता चला आ रहा है। इस बात को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी माना है कि फिलिस्तीनियों के विरुद्ध प्रतिबंधित हथियारों का प्रयोग किया गया है।
राष्ट्र संघ के एक रिपोर्टर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इसराइल ने फिलिस्तीनियों के विरुद्ध फास्फोरस बम का प्रयोग किया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फास्फोरस बमों को फिलिस्तीन के आवासीय क्षेत्रों में प्रयोग किया गया है। हालांकि आवासीय क्षेत्रों में इन बमों के प्रयोग पर प्रतिबंध है। इसका कारण यह बताया गया है कि जब फास्फोरस बम प्रयोग किया जाता है तो जिस क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है वहां पर गर्मी बढ़ जाती है और लोग झुलस जाते हैं। ऐसी हालत में लोगों के मरने की संभावना और अधिक रहती है। कुछ लोग तो आजीवन विकलांग होकर रह जाते हैं।
ज़ायोनियों ने सन 2015 में फिलिस्तीनी प्रतिरोधकर्ताओं के विरुद्ध टोटो नामक प्रतिबंधित गोलियों का प्रयोग किया था। ये गोली ایسی ہوتی ہے کہ جس میں چھرے نکل کر بدن میں گھس جاتے ہیں۔ یہ چھرے جہاں ایک اور بہت پیڑا دائق ہوتے ہیں، وہیں پر وہ موت کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ فلسطینیوں کے ورودھ اسرائیل کی اور سے پرتبندھت ہتھیاروں کے پریوگ کے پشت ساکشوں کے باوجود کسی بھی راشٹری یا انتراشٹری سنگٹھن ایوم سنستھا نے اس کے ورودھ کوئی پربھاوی قدم نہیں اٹھایا، حالانکہ یہی سنگٹھن ہمیشہ ہی مانو ادھیکاروں کے سمان کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، کاریکرم کا سمے اب یہیں سماپت ہوتا ہے، ہمیں انومتی دیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران۔